We're continuing our study on how we can live on this earth in such a way that we have no regret in eternity.
तो हम उस अभ्यास को जारी करते हुए आइए हम यह आगे पढ़ें कि किस तरह का हम जीवन जिए ताकि अनंत जीवन में हमारे इस जीवन के लिए हमें दुख ना हो.
We are different from the animals in the sense that our future lies in eternity and not on this earth.
हम जानवरों से इस प्रकार से अलग या भिन्न हैं कि हमारा जो भविष्य हमारे अनंत जीवन में है, ना कि इस जीवन में जो हम धरती पर जीते हैं.
Most human beings, when they think of the future, they mostly think of only their future on this earth.
अधिकतर मनुष्य जाति में जो कोई मनुष्य अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो वही जीवन के बारे में सोचते हैं जो वो इस धरती पर जीने वाले हैं.
That means they save up for the future and their future is only on this earth.
यानी कि जब हम उससे पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो वो पूछता है कि जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरा भविष्य है.
But that is the mark of a man who has understood the truth of scripture that our life on this earth is a very short period.
पर ये एक चिन्ह है हमारे लिए कि हम जान सकते हैं वचन के द्वारा कि हमारा जीवन इस धरती पर थोड़े दिनों का है.
And we can say our entire life on earth is like a probation where God is testing us.
हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन जो हम इस धरती पर बिताते हैं एक समय है जहां पे परमेश्वर हमें जांचते हैं.
To see where we shall be in eternity.
ताकि वो ये जान सके कि हम अपने अनंत जीवन में कहां होंगे.
And that is why we have promises in scripture concerning rewards for those who are faithful.
और इसलिए वचन में हमारे पास परमेश्वर वादा करता है उन लोगों के लिए जो इस जीवन में विश्वास योग्य बने रहते हैं.
Jesus told parables about people who were faithful with what God gave to them.
यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत कहे उन लोगों के विषय में जो विश्वास योग्य रहते हैं उन चीजों के साथ जो परमेश्वर उन्हें देता है.
He told a parable about someone who was given 10 servants who were given 1 talent each.
और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा जिसमें उसने कहा कि ऐसे कुछ सेवक थे जिनको उनके मालिक ने कुछ पैसे या कुछ तलंत दिए थे.
I want to just turn to that in Luke chapter 19.
आइए हम सब इस दृष्टांत को पढ़ें लूका के 19वें अध्याय में.
What was Jesus trying to emphasize in this parable?
यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे इस अध्याय के द्वारा?
He says here in Luke chapter 19 verse 12 about a certain nobleman who went to a distant country to receive a kingdom and then return.
लूका के 19वें अध्याय के 12वें वचन में यीशु मसीह उस अमीर आदमी के विषय में कहते हैं जो अपने सेवकों को कुछ धन देकर दूर के देश में काम के लिए चला जाता है.
We know that is a picture of Christ who is gone. One day the kingdoms of earth will come to him and then he will return.
और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो अमीर आदमी प्रभु यीशु कह रहा था वो खुद मसीह था जो हमसे जा चुका है और एक दिन वो आने वाला है कि अपने राज की जो फसल उसको काटे.
And he called 10 of his servants.
और वो कहता है कि उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया.
And he gave them 1 mina each.
और उन सभी को उन्होंने एक एक तलान या एक एक पैसा दिया.
And they all got equal amount.
और उन सभी के पास समान राशि थी.
You know there is another parable in Matthew 25 where God gave where the parable the person gave different amounts to 3 of his servants.
और एक दृष्टांत है मत्ती के 25वें अध्याय में जहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा दृष्टांत दिया कि उन्होंने एक मालिक ने अपने सेवकों को अलग अलग कम ज्यादा राशि या पैसे दिए.
There the message is something else.
वहां पे जो संदेश था वो कुछ और था.
One servant got 5 pounds, another got 2 pounds, another got 1 pound.
एक सेवक के पास 5, एक के पास 3, एक के पास 2 और एक के पास 1 तलान थे.
And that teaches another truth that God has given us all different gifts.
ये उस संदेश को हमें देता है कि परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में अलग अलग उपहारों को रखा है.
Some people are given more gifts, some people are given less gifts.
कुछ लोगों को ज्यादा उपहार दिए हैं, कुछ लोगों को कम उपहार दिए हैं.
I mean, we see that in Christendom today.
और आज हम देख सकते हैं यहाँ पर.
Just like Paul, for example, he had many, many gifts.
हम देख सकते हैं कि बाइबल में संत पौलुस उसके पास कई उपहार थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे.
And even today, we find certain servants of God who got certain unique gifts. And some others who don't seem to have much.
और आज भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ ऐसे दास हैं जिनके पास ऐसे अनोखे दान हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिए जो किसी के पास नहीं है.
And if God has given you more, He will expect more from you.
पर यदि परमेश्वर ने आपको ज्यादा दिया है तो परमेश्वर आपसे ज्यादा की अपेक्षा करेगा.
To the one whom God had given 5 talents or pounds, He expected at least 5 more.
क्योंकि जिसको परमेश्वर ने 5 रुपए या पांच तलान दिए थे, परमेश्वर ने उसे अपेक्षा की थी कि वो और पांच कमा कर लाए।
And to the one whom he had given only two, he expected only two.
पर जिसको उसने सिर्फ दो दिए थे, उसने सिर्फ अपेक्षा की कि वो और दो तलान कमा कर लाए।
You don't have to envy somebody who's got more gifts than you.
तो आपको उन लोगों से जलन करने की जरूरत नहीं जिनके पास अधिक दान है या
गिफ्ट है। If you've got less, God is going to expect less from you.
अगर आपके पास कम है तो परमेश्वर आपसे कम की अपेक्षा करेंगे।
A person who has more opportunity to serve God, God will expect more from him.
वो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा मौका प्रभु देता है उसके सेवकाई करने का, वो उससे और अपेक्षा करेगा कि व्यक्ति उसकी और सेवा करे।
But that's not what we're looking at now.
पर ये वो संदेश नहीं है जो आज हम देखने वाले हैं।
The difference in this parable is that everybody got the same amount.
उस दृष्टांत और इस दृष्टांत के बीच में यह फर्क है कि इस दृष्टांत में हर एक सेवक के पास समान पैसे दिए गए थे।
That parable, as I said, relates to the gifts God has given us, which is tremendously different.
वो जो दृष्टांत था जिसके बारे में हमने बात की, उसमें परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग मोहरे दी थी जो दान से मेल खाती है या दान की समानता में है।
That we can easily understand because when you look around, we see each person in the church has got different level of gifts.
और इस दृष्टांत को हम सभी बखूबी से समझ सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कलीसिया में हर एक को अलग अलग दान दिए गए हैं।
Different level of opportunities.
और हर एक को अलग अलग मौका दिया जाता है कि परमेश्वर की सेवा की जाए।
But here he speaks about 10 servants, all of them got exactly the same amount.
पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात करते हैं उन 10 सेवकों के बारे में जिनके सभी के पास एक समान मोहरे दी गई थी।
And yet one of them, in verse 16, comes back with 10 minas.
और बाइबल कहती
है। He multiplied that one into 10.
और बाइबल कहती है 16वें वचन में, भले ही उनके पास एक मोहर दी गई थी पर उस 10 में से एक सेवक ने 10 मोहरे कमा कर लेकर आए।
एंड अनदर पर्सन वर्स 18 कुड मेक ओनली 5 आउट ऑफ दैट वन।
और दूसरा जो सेवक था 18वें वचन में हम पढ़ते हैं उसने एक मोहर से पांच मोहरे कमा ली।
एंड अनदर पर्सन ही डिडंट डू एनीथिंग विद द वन ही हैड।
और तीसरा जो सेवक वो आया उसने अपनी तलंत उसने अपनी मोहर के साथ कुछ नहीं किया, उसने उसको ऐसे ही रखा।
व्हाट इज द एरिया वेयर All of us are equal.
कौन सा वो क्षेत्र है हमारे जीवन में जहाँ पे हम सब एक समान हैं?
It's not gifts because we are different in gifts.
ये दान या परमेश्वर का उपहार नहीं हो सकता है क्योंकि हम उपहारों में अलग हैं।
But there's one area where God gives all of us exactly the same.
पर एक क्षेत्र है जहाँ पे परमेश्वर हम सभी को एक समान चीज देते हैं।
And that is what he's emphasizing in this parable.
और यही वो चीज है जो इस दृष्टांत में वो बताना चाहते हैं।
All of us are given exactly 24 hours every day.
हम सभी को ठीक 24 घंटे दिए जाते हैं हमारे जीवन में।
Nobody gets more, nobody gets less.
किसी को ज्यादा नहीं मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता है।
Exactly the same for everyone.
ठीक बिल्कुल समान सभी को मिला है।
But what some believers do with the 24 hours is fantastically different from what other believers do with their 24 hours.
कुछ विश्वासी जो अपने जीवन के 24 घंटे के साथ जो काम करते हैं वो इतना खूबसूरत है उनसे कई बढ़कर जो विश्वासी उसके साथ कर सकते हैं।
Some believers just play the fool, waste their time and do nothing.
कुछ विश्वासी जाते हैं यहाँ वहाँ भटकते हैं अपने काम को पूरा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, टाइम व्यर्थ कर देते हैं।
You're like the person who took this one mina and just buried it and did nothing with it.
क्या आप उस जन से प्यार करोगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिसने अपने एक मोहर के साथ कुछ नहीं किया उसको यूं ही रख दिया?
And there are others who are gripped by the fact that life is very short.
और दूसरे जो सेवक थे उनके दिल में ये बात बैठी हुई थी कि हमारा जीवन बहुत छोटा है।
They are not always kneeling down and praying. No.
ये लोग हमेशा घुटने पर बैठ के प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे।
No, but they realize that I have one life. And I must complete what God wants me to do with this life.
पर उनको ये बात पता चल गई थी कि मेरे पास सिर्फ एक जीवन है और परमेश्वर चाहता है कि इस एक जीवन में उसकी इच्छा को मैं पूरी करूं।
They don't have time to fool around and do a lot of things that other believers do.
उनके पास समय नहीं था कि वो काम करें जो दूसरे कर रहे हैं।
There are many lawful things that they could do, but they don't do all of them because they don't have time for it.
बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो भी कर सकते थे। लोग कहते ये अच्छा काम है आप ये कीजिए, पर उन्होंने नहीं किया।
They are gripped by the fact that God laid hold of them with a purpose.
परमेश्वर का इस बात उनके दिल में बैठ गई थी कि परमेश्वर ने एक योजना उनके जीवन में रखी है।
And they always are gripped by that.
और सभी के दिल जिन्होंने काम किया इस बात से जकड़े हुए थे।
They say like the apostle Paul.
और उन्होंने संत पौलुस के समान कहा।
There's only one thing I do in life.
कि मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बात करता हूँ।
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
मैं मसीह के ओर देखकर आगे दौड़ता जाता हूं ताकि मैं अंत में उस परिणाम को पा लूं.
The sad thing is, very few believers can say there is only one thing I do in life.
पर दुख की बात यह है कि हम ऐसे बहुत से कम ऐसे विश्वासी हैं जो इस बात को कह सकते कि मैं सिर्फ एक चीज करता हूं.
A lot of believers are dabbling around in so many things.
बहुत सारे विश्वासी हैं जो अलग-अलग काम में व्यस्त हैं.
They are the ones who, with their one mina, they may produce two minas perhaps.
हो सकता है वो ऐसे विश्वासी हैं जो अपने एक मोहर के साथ दो मोहर बनाते हो.
But those who are gripped by the calling of God upon their life, they will produce the maximum, like this one man produced 10.
पर जिनके हृदय परमेश्वर के बुलाहट से जकड़े हुए हैं, जो जानते हैं परमेश्वर के बुलाहट को, वो एक मोहर से 10 मोहर कमाते हैं.
And you don't have to be converted very early in life to do that.
पर ये जरूरी नहीं है कि आप बोलें कि मैं अपने जीवन में बहुत पहले ये सब शुरू करता तो शायद अब तक हो जाता था.
The apostle Paul was converted only when he was about 30 years old.
क्योंकि जब संत पौलुस नया जन्म लिया उसने प्रभु यीशु को स्वीकारा तो वो 30 वर्ष का था.
And he died when he was about 67.
और वो मरा जब वो 67 years old का था.
Many of us are saved in our teenage years.
हम लोग कहते हैं कि हम में से बहुत जन तभी बचे जब हम जवान थे, जब हमने प्रभु को स्वीकारा.
And we have been believers for a longer period than Paul was a believer on earth.
और इस धरती पर जितने साल पौलुस विश्वासी नहीं था, हम उससे कई अधिक वर्ष विश्वासी हैं.
I've been a believer for a longer period than Paul was a believer on earth.
संत पौलुस जितने वर्ष इस धरती पर विश्वासी नहीं था, उससे ज्यादा अब मैं हूँ.
But I am ashamed when I compare myself with what Paul accomplished in his life.
पर मुझे लज्जा होती है जब मैं तुलना करता हूँ अपने आप को पॉल के साथ में, जो उसने किया और जो मैंने किया है.
Paul and I are going to stand together in eternity in heaven.
पॉल और मैं अनंत जीवन में एक साथ खड़े होने वाले हैं.
You think we're going to be equally happy with the life we lived on earth?
क्या आप सोचते हैं कि मैं और वो वहां पर एक समान खुश होंगे कि कैसा जीवन हमने यहाँ धरती पर बिताया है?
I mean, Paul would be so satisfied when he looks back over his life.
मेरा मतलब है जब पॉल वहां पर होगा तो कितना खुश और संतुष्ट होगा उस प्रकार के जीवन जो उसने यहाँ पर बिताया है.
He will say, well, for 30 years I had no light, I went along a wrong path.
वो वहां पर कहेगा 30 साल तक मेरे जीवन में अंधियारा था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपने रस्तों में चल रहा था.
But once I understood the truth,
पर जब मैंने सत्य को जान लिया,
there was no more half-heartedness in me.
मेरे अंदर कोई भी आधा दिल नहीं था.
Till the end of my life, I pursued one thing.
और मेरे जीवन के आखिरी समय तक मैंने एक ही चीज का पीछा किया.
I realized that Jesus laid hold of me with a purpose.
और मैंने जान लिया कि यीशु मसीह ने मेरे दिल को पकड़ लिया है और उसने मेरे जीवन में एक योजना रखी है.
I wanted to lay hold of that purpose completely before I left the earth.
और इससे पहले कि मैं इस धरती को छोड़कर जाऊं, मैं उस बुलाहट को पकड़ के रखना चाहता हूं.
See Philippians in chapter 3.
आइए हम फिलिपियों की किताब देखें, तीसरा अध्याय.
He says here in verse 13.
और 13वें वचन में वो कहता है,
वन थिंग आई डू.
वो कहता है एक बात मैं जो करता हूं.
There's only one thing he decided to do in life.
और केवल एक बात जो पॉल ने निश्चय की है अपने जीवन में करने के लिए.
एंड what was that?
और वो कौन सी चीज थी?
He says in the last part of verse 12.
और वो 12वें वचन के आखिरी भाग में कहता है,
आई वॉन्ट टू ले होल्ड ऑफ दैट फॉर विच क्राइस्ट लेड होल्ड ऑफ मी.
वो कहता है मैं उस वस्तु को पकड़े रखना चाहता हूं जिस वस्तु को मसीह ने मुझ में पकड़े रखा है.
That means on the Damascus road, Jesus laid hold of Paul.
इसका मतलब ये था कि जब पॉल उस दमास्कस के रास्ते पर जा रहा था, यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया.
And he said, Lord, why have you laid hold of me?
और उसने पूछा, प्रभु तूने मुझे क्यों धर लिया है?
And little by little over the period of many years, God revealed to him why he had laid hold of him.
और धीरे करके, धीरे 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 करके, कई वर्ष के बाद परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि क्यों उसने पौलुस को चुना है.
He never forced Paul to do that.
परमेश्वर ने कभी जबरदस्ती नहीं की पॉल से कि तू इस काम को कर.
Every day Paul had a choice to do what God wanted him to do or do his own will.
हर एक दिन पौलुस के सामने चुनाव था कि वो काम करे जो परमेश्वर उसे कह रहा है या उसको नकार दे और ना करे.
He could have gone back to Tarsus and been a Christian businessman and served the Lord and supported God's work with money.
हो सकता है पौलुस ऐसा सोचता कि मैं तार्सिस वापस लौट जाता हूँ, मैं एक मसीही व्यवसाय करने वाला हूँ और मैं पैसे से सेवकाई करूंगा.
But that would be a good thing. I mean, what's wrong in being a Christian businessman and supporting the Lord's work?
एक व्यवसाय होने वाला और मसीह व्यवसाय होना कुछ गलत बात नहीं है और प्रभु के काम के लिए पैसा देना कोई गलत बात नहीं है.
He could have been a good member of the church in Tarsus.
हो सकता है तार्शिश में जाके पॉल कहता कि मैं कलीसिया में सदस्य बन जाऊंगा और अच्छा जीवन जीऊंगा.
He could have lived a good holy life.
मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा.
But that was not God's plan for Paul.
पर पौलुस के लिए परमेश्वर की यही योजना नहीं थी.
God's plan for Paul was a very difficult path.
परमेश्वर की जो योजना पौलुस के लिए थी वो बहुत कठिन थी.
And as he thought about that path that God laid hold of him, he knew that it would involve a lot of suffering.
और वो सारा मार्ग जो प्रभु ने पौलुस के लिए तैयार किया उसने जब उसे जाना तो उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया और कहा प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ.
See, we live in an age where Christians are taught that God is only interested in making life very comfortable for you.
हम सोचते हैं कि वो ऐसी उम्र में था. हम सोचते हैं हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर चाहता है हमें बहुत आराम दे, हमें आराम से रखे.
You know, God's interested in giving you a better house.
आप सोचते हैं परमेश्वर मुझे सिर्फ अच्छा घर देना चाहता है.
God's interested in giving you a better car, perhaps.
परमेश्वर चाहते हैं कि मैं सब कुछ सब चीजों में संतुष्ट रहूं.
Good health.
मुझे अच्छा तंदुरुस्ती मिले.
Live a comfortable life.
मुझे एक आरामदेह जीवन मिले.
And then teach your children also to live that same comfortable life.
और आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम आराम का जीवन जियो.
That's what we are hearing on television nowadays.
आजकल हम जो टीवी पर सुनते हैं वो यही है.
I tell you, Christians are being brainwashed to miss the perfect will of God for their lives.
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मसीहों के मनों को धो दिया गया है ये कहकर कि उनका जीवन आराम का है क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट कुछ और है.
The devil has deceived people.
शैतान ने लोगों को फंसाया है.
Let me read to you the type of life that Paul lived, the greatest servant of God in that century.
मैं आपको पढ़कर दिखाना चाहता हूं कि संत पौलुस ने जो परमेश्वर का एक बड़ा दास एक संत था पवित्र शास्त्र में उसने कैसा जीवन जिया.
How did God allow his servant to be treated?
कैसे परमेश्वर ने अपने दास को भोजन खिलाया है.
2 Corinthians chapter 11.
दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय.
He says there are many people boasting that they are servants of God.
और पौलुस यहां कहता है कि बहुत ही लोग गर्व करते हैं कि वो परमेश्वर के दास हैं.
Nowadays people boast that.
आज लोग घमंड करते हैं.
I have preached the gospel in 85 countries.
लोग कहते हैं मैंने 85 देशों में सुसमाचार प्रचार किया है.
I have preached to so many million people over television.
मैंने टीवी पर प्रचार किया है और कई करोड़ों लोगों ने मेरे द्वारा प्रभु का सुसमाचार सुना है.
So many hundreds of thousands of people have raised their hands and signed decision cards.
जब मैंने पूछा तो कई लोगों ने हाथ उठाए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया है.
I have done so many miracles through my ministry.
मेरे सेवकाई के द्वारा मैंने कई चमत्कार किए हैं.
These are the empty boasts of today's preachers.
आजकल के प्रचारकों का ये खाली या व्यर्थ में करे जाने वाला घमंड या गर्व है.
Paul says in 2 Corinthians 11.
दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में पौलुस कहते हैं.
Since verse 18, since many boast according to the flesh, I will also boast.
पौलुस 18वें वचन में कहता है, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा.
He says, I'm speaking in foolishness, verse 21.
और 21वां वचन कहता है, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है.
You know what Paul did? He had raised the dead. He had done fantastic miracles. Handkerchiefs from his body delivered people from demons.
आप जानते हैं पौलुस ने क्या किया था? पौलुस ने मुर्दे लोगों को जीवित किया था. उसने कई लोगों को चंगा किया था. उसके शरीर से निकाले जाने वाले रुमाल से लोग चंगे हो गए थे.
He planted churches all across the Mediterranean.
वो सारे देशों में जा जाकर उसने चर्चों की स्थापना की थी.
But he doesn't mention one of those things.
पर उसने एक चीज की भी घोषणा नहीं किया, एक चीज पर भी घमंड नहीं
किया. He doesn't mention the thousands of people who heard his message or who received Christ.
उसने कभी नहीं कहा कि हजारों लोगों ने मेरी बात सुनकर मसीह को स्वीकारा है.
He says, I'll tell you what I've, how I have served the Lord.
वो कहता है, मुझे तुम्हें बताने दो कि मैंने मसीह की सेवा कैसे की है.
Verse 23, I've been in prison more than all of you and the others.
और 23वां वचन कहता है कि मुझे जेल में डाला गया. मुझे इतने बार मारा गया है कि मैं उनकी गिनती नहीं जानता हूँ.
And I was beaten 5 times with 39 lashes.
24वां वचन कहता है, 5 बार 39 कोड़े मैंने खाए हैं.
3 times I was beaten with rods.
3 बार मैंने बेतों से मार खाई है.
Once I was stoned.
एक बार मुझ पर पत्थराव किया गया.
Three times I was shipwrecked.
तीन बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया.
We say, Lord, is this how you treat
तो हम कहते
your greatest servants?
हम कहते प्रभु ये वो तरीका है जिस रीति से तू अपने सबसे महान सेवकों से बर्ताव करता है.
This was not some cheap TV evangelist collecting money from people in order to build a big mansion for himself.
ये कोई प्रचारक नहीं था जो टीवी पर प्रचार करके पैसे जमा कर रहा हो.
This was a servant of the living God.
ये जीवित परमेश्वर का दास था.
Look how God allowed him to be treated.
आप देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या बात होने दिए.
24 hours he was in the sea because the ship was wrecked.
वो कहता है मेरा जहाज टूट गया और 24 घंटे तक मैं समुद्र में पड़ा रहा.
Verse 26.
और 26 वचन कहता है.
I've been in dangers from rivers, robbers, countrymen, Gentiles, wilderness, in the sea. All types of dangers.
वो कहता है मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों में डाकुओं के जोखिमों में अपने जाति वालों के जोखिमों में अन्य जातों से जोखिमों में नगर के जोखिमों में और सब प्रकार के खतरों में पड़ा हूँ.
I've been through many sleepless nights, verse 27.
और 27 वचन कहता है मैंने कई परिश्रम किए हैं और कई रात मैं सोया नहीं.
I've been hungry and thirsty and often without food.
बार बार उपवास करने में और बार बार प्यासे रहने में मैंने समय बिताया है.
These are two different things.
ये दो चीजें हैं.
Sometimes he fasted because he chose to go without food.
यहाँ पर दो चीजें हैं. कई बार उसने उपवास किया क्योंकि उसने इच्छा की थी कि आज मैं उपवास करूँगा.
Food was available, but he fasted.
खाना था पर उसने ये निश्चय किया था कि मैं आज उपवास करूँगा.
At other times,
पर वो कहता है दूसरे समय में.
He wanted to eat, but there was no food available.
वो कहता है दूसरे समय में मैं चाहता था कि मैं खाऊं पर खाना नहीं था.
He didn't have enough money to buy food.
उसके पास पैसे नहीं थे कि वो पैसा खाना खरीद सके.
Say, Lord, is this how you treat your greatest servants?
तो हम लोग कहते हैं क्या प्रभु ये वो तरीका है जो तू अपने दासों से बर्ताव करता है?
It says further in verse 27, sometimes he didn't have a blanket to cover himself from the cold.
और 27 वचन में वो आगे कहता है कि मेरे पास कंबल नहीं था कि मैं ठंडी में अपने आप को ढक सकूं.
I tell you, I feel I'm like a tourist compared to Paul.
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब अपने आप को पौलुस से तुलना करता हूं तो मुझे बहुत नीचा महसूस होता है.
I'm constantly humbled before God when I read this passage.
मैं लगातार परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता हूं जब कभी इस अध्याय को मैं पढ़ता हूं.
I live in a world where I see preachers and servants of God boasting about all types of things.
मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां पे प्रचारक परमेश्वर के सेवक गमन करते हैं.
They stand on platforms and television screens exactly like film stars.
वो मंच पर खड़े होते हैं, टीवी पर आते हैं, सेम उसी रीति से जैसे आजकल के सिने कलाकार आते हैं.
Boasting about all types of things.
और अपने सारे प्रकार की चीजों के विषय में गमन करते हैं.
Very emotional, effective speakers.
बहुत ही भावना से बात करेंगे और आपको बताएंगे.
If I watch them too much, I'll get deceived.
और अगर मैं उनको देखता रहूं तो हो सकता है मैं भी फंस जाऊंगा.
So I get back to passages like this and read them again and again.
तो मैं तुरंत इस अध्याय पर आता हूं और बार-बार इस अध्याय को पढ़ता हूं.
I say, Lord, I don't want to be deceived by that. This is what it means to serve God.
मैं कहता हूं प्रभु मैं उन बातों से फंसना नहीं चाहता हूं. ये वो मतलब है कि परमेश्वर आपकी सेवा करने से क्या होता है.
And this keeps me on my face before God.
और ये बात है, ये जो अध्याय है मुझे परमेश्वर के आमने सामने बनाए रखते हैं.
If I want to live a life without regret in eternity.
अगर मैं सच में वो जीवन जीना चाहता हूं जिस जीवन का मुझे अनंत काल में दुख ना हो.
I must not be fooled by the false gospel that is being preached today.
तो मुझे उस झूठे सुसमाचार से फंसना नहीं है जो आज प्रचार किया जा रहा है.
Jesus called us to a life of suffering.
यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें तकलीफें हो.
To a life of self-denial.
हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें हम खुद को ना कहें.
To have the opportunity to live comfortably and to give it up for the sake of the gospel.
हम एक ऐसा जीवन जिए जहां पर हमारे पास मौका हो कि मैं हम ऐशो आराम का जीवन जी सके पर हम मसीह के सुसमाचार के लिए उसको ना कर दें.
That is the true gospel.
ये सच्चा सुसमाचार.
If you listen to that,
अगर आप
you will have no regret in eternity.
अगर आप उस सुसमाचार को सुनते हैं तो आपको आपके अनंत जीवन में कभी दुख ना होगा.
But if you respond to the false gospel with which you are being flooded day and night,
पर अगर आप उस झूठे सुसमाचार पर ध्यान करते हो जो रात और दिन प्रचार किया जा रहा है.
You may not believe me, but I tell you in Jesus name, you will regret all through eternity.
हो सकता है आज आप मुझ पर विश्वास न करें पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आप अपने अनंत जीवन में दुख करेंगे.
He who has ears to hear, let him hear.
जिसके पास सुनने के कान है वो सुन ले.
God has got a plan for our life.
परमेश्वर के पास एक योजना है हमारे जीवनों के लिए.
And that plan is not a plan where we are to live comfortably and make the most of this world.
और वो योजना ये नहीं है कि हम अपना पूरा जीवन आराम से बिताएं और हमारे लिए इस धरती पर धन और संपत्ति इकट्ठा करें.
Jesus said, if anyone wants to come after me,
यीशु ने कहा यदि कोई भी चाहता है कि मेरे पीछे आए,
let him say no to himself and his selfish desires every day.
उसने कहा कि वो अपने आप को ना कहे और अपनी खुद की इच्छा को हर एक दिन नकारे.
And take up his cross and die to himself.
अपना क्रूस उठाए और अपने आप के लिए मर जाए.
And die to all those desires in the flesh which call us to live comfortably.
और उन सारी इच्छाओं के लिए अभिलाषाओं के लिए मर जाए जो हमारे शरीर में है, जो हर समय बाहर आना चाहती है.
Paul need not have chosen this type of life.
Paulus खुद इस प्रकार के जीवन को कभी नहीं चुनता.
He need not have done that. He could have chosen a more comfortable way.
Paulus खुद कभी इस प्रकार के जीवन को नहीं जीना चाहता था. वो हो सकता था आराम का जीवन जीना चाहे.
You don't have to live this type of life to go to heaven.
हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं स्वर्ग जाने के लिए ऐसा प्रकार का जीवन जीऊं.
The Lord never said to go to heaven you must be beaten 200 times on your back and be imprisoned so many times.
प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो 200 बार तुम्हारे पीठ पर कोड़े मारे जाए तब तुम स्वर्ग जा सकते हो.
He need not have chosen this way.
Paulus खुद भी नहीं चाहता था कि कभी उसका जीवन ऐसा हो.
But he knew what Jesus had done for him.
पर वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है.
He knew that Jesus came from heaven and gave everything for him.
वो जानता था कि प्रभु यीशु जब स्वर्ग से आया तो उसने अपनी पूरी चीजों को उसके लिए दे दिया है.
His gratitude to Jesus was not going to be just empty words of praise and singing on Sunday morning once a week.
और पौलुस का धन्यवाद परमेश्वर के लिए सिर्फ स्तुति और आराधना के गीतों में रविवार सुबह के दिनों में नहीं होता था.
His gratitude to Jesus was going to be shown in a lifetime of devotion and sacrifice.
पौलुस का धन्यवाद परमेश्वर के लिए इस रीति से था कि वो अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे और उसके जीवन में उसके लिए श्रद्धा.
Where he had the opportunity to live a comfortable Christian life and he would deny it.
पौलुस के पास मौका था कि वो एक आरामदेह ऐशो आराम का मसीह जीवन जिए, पर उसने नहीं कहा.
Where he had the opportunity to be a big dignitary in the church because of his scholarly knowledge of the Bible.
उसके पास वो मौका था कि उस समय की कलीसिया में एक मुख्य व्यक्ति बन जाए क्योंकि उसके पास ज्ञान था.
But he gave it up.
पर उसने वो स्थान छोड़ दिया.
He didn't want a position. He didn't want any honor.
वो स्तर नहीं चाहता था, वो इज्जत नहीं चाहता था.
He was treated like the scum of the earth.
उसको इस धरती के धूल के समान बर्ताव किया गया.
They called him a false prophet and heretic and false teacher and all types of bad names they gave him.
लोगों ने गलत नाम दिए, कहे कि तू झूठा भविष्यवक्ता है, तू झूठा शिक्षक है, तू गलत बातें सिखाता है.
He could have been a rich man.
वो एक अमीर आदमी हो सकता था.
You know, the very fact that he grew up in Tarsus indicates that he came from a very rich family because it's only the rich Jewish businessmen who went to Tarsus.
बाइबल हमसे कहती है कि पौलुस तार्सिस से था, और अगर हम इतिहास देखें, तार्सिस अमीर लोगों का देश था, तो ये बताता है कि पौलुस एक अमीर परिवार से था.
He could have gone back there and lived with his family fortune and been a good Christian.
हो सकता है पौलुस सोचता कि मैं वापस चला जाऊं और वहां पे एक अच्छा मसीह जीवन जीऊं और जो कुछ पैसे मैं कमाऊं उससे कलीसिया को मदद करूं.
But how could he express his gratitude to Jesus Christ with that type of Christianity?
पर किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को वो अपना धन्यवाद प्रकट कर सकता था अगर वो तार्सिस लौटकर पैसे कमाकर पैसे कलीसियाओं में देता था?
There is another passage of scripture which I read often to deliver me from the deception of today's Christendom.
और एक ऐसा अध्याय है बाइबल में जो मैं बार बार पढ़ता हूँ ताकि मैं उन चीजों से ना फंसू जो आजकल हम देखते हैं.
You know, we are all capable of being brainwashed if we listen or watch something very frequently.
आप जानते हैं हम सभी के पास ऐसी काबिलियत है कि हमारा दिमाग बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए अगर हम कोई चीज को बार बार देखते रहते हैं तो.
यू रीड सर्टन टाइप्स ऑफ लिटरेचर, द सेम टाइप ऑफ लिटरेचर, आफ्टर अ फ्यू इयर्स योर माइंड विल बी ब्रेन वॉश टू थिंक लाइक दैट.
आप कुछ चीजों को बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और कुछ सालों के बाद जो लिखा है आपको लगता है यही बात सच है.
दैट्स हाउ द कम्युनिस्ट्स गेट अ होल्ड ऑफ पीपल्स माइंड्स.
और इसी प्रकार से जो झूठी बातें हैं वो लोगों के मन में बैठ जाती हैं.
And when I see a lot of things that are being shown on Christian television today,
aur main janta hu ki aur vishwas karta hu ki aajkal jo masih channelon par dikhane wali bahut sari baatein hain,
I know that if I keep watching that day after day, my mind will be brainwashed into a type of Christianity which is not found in the Bible.
Main janta hu ki agar main saal dar saal unhi cheezon ko television par dekhta rahu jo masih channelon par dikhai jati hai, मेरा मन धुल जाएगा, मेरे विचार बदल जाएंगे।
टू सेव माई सेल्फ आई गेट बैक टू स्क्रिप्चर।
और मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा तो बाइबल के हिसाब से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाइबल को फिर से पढ़ना शुरू कर दो।
एंड नॉट जस्ट दोस फ्यू वर्सेस दैट इफ यू ट्रस्ट द लॉर्ड यू कैन क्लेम दिस थिंग एंड दैट थिंग एंड द अदर थिंग इन द वर्ल्ड।
और सिर्फ ऐसे वचनों पर ध्यान नहीं करो जो कहता है कि तुम प्रभु से मांगो सब कुछ मिलेगा, प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो।
आई रीड पैसेजेस लाइक वी जस्ट रेड इन 2 कुरिन्थियंस 11।
मैं ऐसे अध्याय को बार बार पढ़ता हूँ जो अभी हमने पढ़ा, दूसरे कुरिन्थियों का 11वां
अध्याय। एंड अनदर पैसेज आई रीड इज 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4।
और दूसरा एक अध्याय जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ वह पहला कुरिन्थियों का 4वां अध्याय।
अगेन पॉल, दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड।
हम पौलुस के बारे में पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर का एक महान दास था, और उसके जीवन के विषय में हम जानते हैं।
हाउ इज दिस ग्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड, हाउ डिड ही लिव?
और इस महान सेवक का जीवन कैसा था, उसने कैसा जीवन बिताया?
थैंक गॉड ही वाज ऑनेस्ट टू टेल अस हाउ ही लिव्ड।
प्रभु को धन्यवाद कि वो ईमानदार था इन बातों को लिखने के लिए कि उसने कैसा जीवन बिताया।
ही डिड नॉट हैव दैट फॉल्स ह्यूमिलिटी व्हिच सेड नो, आई वोंट टेल एनीबॉडी हाउ आई लिव्ड।
उसने उस झूठे नम्रता का भेष नहीं धारण किया और कहा नहीं मैं ये सब बातें किसी को बताने नहीं चाहता हूँ।
ही वाज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट टू टेल अस समथिंग ऑफ द सैक्रिफाइसेस ही मेड।
पवित्र आत्मा ने उसकी प्रेरणा की कि उन बातों को लिखे जो कुछ बातें उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए सही थी।
1 कुरिन्थियंस 4 वर्स 10।
पहले कुरिन्थियों का 4वां अध्याय 10वां वचन।
ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द कुरिन्थियन क्रिश्चियंस हु लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल क्रिश्चियन लाइफ।
यहाँ पे पौलुस अपने आप को उन कुरिन्थियों के मसीहों के साथ तुलना करता है जो बहुत आरामदेह जीवन जी रहे थे।
दे वर कार्नल, डिफीटेड बाय सिन।
वो पाप से हारे हुए थे, उनका मन दुनिया का मन बन चुका था।
But they believed in a prosperous Christianity.
पर फिर भी वो ये विश्वास करते थे कि मसीह मतलब उन्नति करना है।
And so he says, we are fools for Christ's sake, but you are all very prudent in Christ.
तो पौलुस यहाँ कहता है हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो।
How were they clever in Christ?
कैसे वे लोग मसीह में बुद्धिमान थे?
They were clever to get the best in this world and the best in heaven.
वो इसलिए उनको बुद्धिमान कहता है क्योंकि वो ऐसे सोचते थे कि इस दुनिया में जो भी अच्छा है हमें चाहिए और उस दुनिया में जो भी अच्छा है वो भी हमें चाहिए।
The fools are those who suffer in this world and seek glory in heaven.
मूर्ख वो लोग हैं जो इस दुनिया में दुख उठा के भी कहते हैं कि हमें वहां पर आनंद चाहिए।
The clever people are, they say, hey, you don't have to live like that, man. You can have the best in this world and the best in heaven too.
पर बुद्धिमान लोग कहते हैं अरे तुमको ऐसे जीवन जीने का क्या जरूरत है, यहाँ पर भी तुम आनंद मनाओ, वहाँ पे भी तुम आनंद मनाओगे।
That's what makes people carnal like the Corinthians.
पर यही वो बात है जो लोगों को कुरिन्थियों के समान दुनिया का लोग बना देती
है। That's what leaves them like babes spiritually.
और यही वो बात है जो मसीह लोगों को अपने आत्मा में भी बच्चा बनाए रखती है।
They don't become spiritual giants like Paul.
वो अपने आत्मा में पौलुस के समान मजबूत नहीं हो सकते हैं।
Those are the people who live regret all through eternal ages.
और ये वो लोग हैं जो उनके अनंत जीवन में पूरे अनंत काल में दुखित होंगे।
They are the people about whom it is described in chapter 3 verse 15.
और ये वो लोग हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है तीसरे अध्याय के 15वें वचन में।
That when their work is tested in the final day.
कि जब उनके काम की जांच की जाएगी अंतिम दिनों में।
Their life will be burnt up, even though they may be saved and spend their eternity in heaven.
Bible कहती है भले ही वो स्वर्ग में अपना जीवन बिताए, पर उनका पूरे जीवन के काम और उनका जीवन जलकर भस्म हो जाएगा।
Imagine that.
आप सोचिए इसके बारे में।
Your sins are forgiven.
आपके पाप क्षमा हो चुके
हैं। But God says you wasted your life, my son.
आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, पर परमेश्वर अनंत जीवन में आपसे कहे, बेटा तूने अपने जीवन को व्यर्थ गला दिया।
Your sins are all forgiven, my daughter, but you wasted your life listening to that counterfeit gospel.
मेरी बेटी तूने अपना जीवन इस दुनिया में व्यर्थ किया है, भले तेरे पाप क्षमा हो गए, पर तूने उस झूठे सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है।
You try to get the best in both worlds and it doesn't work that way.
तूने कोशिश की कि इस दुनिया में और स्वर्ग में अच्छी चीजों को जमा करे, पर वो काम नहीं किया।
You were fooled by those preachers who preached that to you because you didn't read my word.
तू उन प्रचारकों की बात सुनकर फंस गई जो टीवी पर और दूसरी जगह पे प्रचार करते क्योंकि तूने मेरा वचन नहीं पढ़ा।
Those TV preachers were your heroes and not the apostle Paul.
और वो टीवी के प्रचारक जो अलग प्रचार कर रहे थे और संत पौलुस की बात तूने नहीं मानी।
This is my hero.
ये मेरा नायक है, मेरा हीरो है।
This is the man I want to follow who said, follow me as I follow Christ.
ये वो आदमी है जिसके पीछे मैं चलना चाहता हूँ, जो कहता है मेरे पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूँ।
And I don't see anyone today in all these famous preachers who is even 1% of this man, the Apostle Paul.
और आज मैं जितने भी प्रचारकों को देखता हूँ उनमें से मुझे 1% भी पॉलुस दिखाई नहीं देता है.
I'm not impressed by all these fellows.
ये जो सारे प्रचारक हैं, वो मुझे कुछ उत्साहित नहीं करते
हैं. But this is the man.
पर ये वो आदमी है.
He said we are fools for Christ.
वो कहता है मसीह के लिए हम मूर्ख हैं.
But you fellows aren't very clever, aren't you?
पर तुम बहुत बुद्धिमान हो नहीं?
He's being sarcastic.
ये लोग बहुत ही अलग हैं.
We are weak, but you are strong.
वो कहता है हम निर्बल हैं, पर तुम बलवंत हो.
Were they strong?
क्या वो सच में बलवंत थे?
They were strong in the world, but they were weak spiritually.
वो दुनिया में बलवंत थे, पर आत्मा में कमजोर थे.
He says, "You are all very distinguished in this world, but in this world we are without any honor."
वो कहता है तुम इस दुनिया में बहुत आदर पाते हो, पर हमारा कोई आदर नहीं करता.
Do you think the greatest servant of God is the one who is most distinguished in this world?
क्या आप सोचते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा परमेश्वर का जो सेवक हो, इस दुनिया में उसका कोई आदर नहीं करे?
So many preachers and Christian servants of God, they are seeking for honor in this world.
कई परमेश्वर के दास और उसके सेवक आज ढूंढते हैं कि लोग उनको इज्जत दें.
They want titles.
उनको अपने नाम के सामने बड़ा पदका चाहिए. उनके सामने बड़ी चीजें चाहिए.
Awards.
उनको अवार्ड चाहिए, उनको ट्रॉफियां चाहिए.
And when they get some worldly award, they think that's a great honor.
और दुनिया की कोई पारितोषिक उनको जब मिल जाते हैं, तो उनको लगता है कि उनका नाम बहुत बड़ा हो गया है.
Do you think Jesus would have got a Nobel Peace Prize if he was living on earth today?
क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह अगर आज इस दुनिया में जिए होते, तो उनको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया जाता?
Do you think Paul would have got it?
क्या पौलुस को वो पुरस्कार मिला जाता?
Paul was a troublemaker wherever he went.
पौलुस जहां कहीं जाता था, वहां पे उसको कोई आदर नहीं देता था.
That'd be a revival and a riot in every city he went to.
जहां कहीं जो कोई शहर में जाता था, वहां पे एक परिवर्तन हो जाता था.
Because he was not there to please men and he never wanted any awards from man.
क्योंकि वो किसी मनुष्य से पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता था.
He wasn't hanging around with the big dignitaries and the chief minister and the president when he went to different countries.
Paul jis desh mein jata tha wahan ke mukhyamantri pradhanmantri wahan ke bade log ke beech mein nahi baitha karta tha.
Jesus also wasn't hanging around with such people.
Aur na hi yeshu in bade logon ke beech mein baitha karta tha.
That is all today's Christendom.
Aaj ka darshan hame yehi dikhai deta
hai. Shallow, backslidden, carnal 21st century Christianity.
21st sadi ki masihata ye hai.
That
जिसमें गहराई नहीं है और लोग पीछे जा चुके हैं.
That seeks honor from worldly people.
जो दूसरे लोगों से अपने आप के लिए इज्जत चाहते हैं.
So he says, you fellows are all distinguished, but we are without honor.
तो पौलुस कुरिन्थियों से कहता है कि तुम सभी लोग आदर पाते हो, तो हमारा कोई आदर नहीं करता.
To this hour, verse 11.
11वां वचन कहता है.
We are hungry and thirsty and poorly clothed.
हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं.
You wouldn't have been impressed by Paul's suit of clothes when he stood up to speak somewhere.
यदि पॉल कहीं खड़े होकर प्रचार करता, तो आप उसके कपड़ों को देखकर कभी खुश नहीं होते.
That is all today's preachers.
आज के प्रचारकों के कपड़े से आप खुश नहीं होते.
Hundreds of thousands of rupees on their clothes and their suits and all that.
कई हजारों रुपए वो अपने सूट्स पर और अपने कपड़ों पर खर्च करते हैं.
To impress people.
ताकि लोगों को प्रभाव डाले लोगों पर.
Where do they get their money from?
और पैसे उनको कहां से मिलते हैं?
Collecting it from poor people.
जो गरीब लोग सामने बैठे हैं उनसे जमा करते हैं.
Fooling them that God will bless you if you give me money so that I can buy this suit.
उनको फंसाकर ये कहते हैं कि यदि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, यदि आप मुझे दो ताकि मैं काम कर सकूं.
Deceivers of the first order.
पहले स्तर के फंसाने वाले.
Thieves, robbers who come into God's house.
चोर और लुटेरे परमेश्वर के घर में आकर बैठ गए हैं.
To take money from simple poor believers.
ताकि सामान्य और गरीब विश्वासी से पैसा लूट सके.
Paul didn't belong to that category.
पौलुस उस स्तर का नहीं था.
He worked with his hands and earned his own living.
बाइबल कहता है उसने अपने हाथ से काम किए और अपनी जीविका को कमाया.
So that he would not be a burden to other people.
ताकि वो किसी और पर बोझ ना हो.
And he did not have money to buy all those expensive suits.
बाइबल कहती है उसके पास पैसे नहीं थे कि वो महंगे कपड़ों को खरीद सके.
He was poorly clothed.
वो कहते हैं वो नंगा था.
Roughly treated and homeless.
उसको घोसे मारे गए थे और वो बिना घर के यहां वहां भटकता था.
Didn't he believe that if you have faith you can claim anything?
क्या उसके पास विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये चाहिए और आप मुझे दे दो?
Like we are taught today.
आज जैसे आपको सिखाया गया है.
I pray that the Holy Spirit will open your eyes to see the truth.
मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोले कि आप इस सच्चाई को जान सके.
He says we toil working with our own hands.
और वो कहता है हमने अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम किया है.
When people cursed him, he didn't curse back.
जब लोगों ने उसको श्राप दिया, उसने लौटकर श्राप नहीं दिया.
It says, we bless those who curse us.
वो कहता है हम उन्हें आशीष दिया है जिन्होंने हमको श्राप दिया.
When we are persecuted for the faith, we endure it.
जब हम विश्वास के कारण मारे गए और सताए गए, हमने वो सहते रहे.
Verse 13, when we are slandered, when people tell false stories about us, We just keep quiet and we conciliate.
तेरे वे वचन में लिखा है वे बदनाम करते रहे हम विनती करते रहे.
God's greatest servants are slandered.
परमेश्वर के महान दास बदनाम किए गए हैं.
The carnal Corinthians are honored.
और वो कुरिन्थियंस जो दुनिया का जीवन जी रहे थे उनको इज्जत मिली है.
Paul was slandered as a false prophet.
पौलुस को यह कहकर बदनाम किया गया कि वो एक झूठा भविष्यवक्ता
है. As a heretic and false teacher.
और यह कहकर उसका नाम खराब किया गया कि वो झूठा चीजें को सिखाता है.
Every servant of God in the Old Testament and the New Testament was slandered as a false teacher and a heretic.
परमेश्वर का हर एक दास जो नए नियम में या नए नियम में बदनाम किया गया था यह कहकर कि वो झूठा भविष्यवक्ता है.
Jesus Christ was slandered like that.
यीशु मसीह को बदनाम किया गया
था. Paul was slandered like
that. पौलुस को बदनाम किया गया था.
These were the greatest men in the eyes of God.
ये परमेश्वर की आंखों में वो महान व्यक्ति थे.
But we are so afraid of such names being given to us.
पर आज हम डरते हैं यदि कोई हमारे नाम को बदनाम करे तो.
You know, Jesus once said that if they have called the head of the house Beelzebub, how much more they will call you, the members of the family.
एक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि यदि उन्होंने शरीर के सिर को शैतान कहा है तो वो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे.
Has anybody ever called you Beelzebub?
क्या कभी किसी ने आपको बेलज़ेबुल बोलकर या शैतान बोलकर बुलाया
है? Because you stood for the things of God, has anybody called you the devil?
क्या कभी आप जब परमेश्वर की बातों को लेकर खड़े हो गए उसके वचन के लिए तो लोगों ने कहा कि तुम शैतान हो?
Has anybody called you a false teacher?
क्या कभी किसी ने आपसे कहा कि तुम झूठी चीजों को सिखाते हो?
I have been called devil.
मुझे बुलाया गया है.
False teacher.
झूठे भविष्यवक्ता करके.
Terrorist.
आतंकवादी करके.
Oh, I could make a list of it. I don't have time.
मैं उसकी सूची बना सकता हूं आपके सामने.
It doesn't make a difference.
पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है.
It proves to me that I am a member of Jesus family.
ये मुझे साबित करता है कि मैं यीशु मसीह के परिवार का एक सदस्य हूँ.
If they called the head of the household Beelzebub, how much more Jesus said the members of his family.
यीशु कहता है यदि घराने के सिर को उन्होंने बिलज़ेबुल या शैतान कहा है तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे.
Don't be fooled by this Christianity which gets you the honor of this world.
तुम इस मसीहा के साथ इस मसीहत के साथ फंस ना जाओ जो कहता है कि मसीह बनना आराम से जीना है.
He says we are slandered.
पौलुस कहता है हमें बदनाम किया गया है.
And we have become verse 13 as the scum of this world, the dregs of all things until now.
और वो कहता है हम इस दुनिया की मिट्टी के समान बन गए हैं और इस दुनिया की सारी ताड़नाएं हमको दी गई हैं.
God has made us verse 9 exhibited us apostles as last of all on this earth.
वो कहता है परमेश्वर ने हमें बनाया है इस दुनिया में प्रेरित के समान और हमें सबसे पीछे रखा है.
The greatest apostles were last.
सोचिए वो सबसे बड़े प्रेरित जो सबसे नीचे रखे गए हैं.
Paul was last in the eyes of the world.
पौलुस इस दुनिया की आंखों में सबसे नीचे था.
There was only one person underneath him.
और उसके नीचे सिर्फ एक जन था.
That was Jesus himself.
वो था प्रभु यीशु मसीह.
He was despised and rejected of all men.
यीशु मसीह को भी सारे मनुष्य के द्वारा धिक्कारा गया और उसका नाम बदनाम किया गया था.
Today,
आज
people say they are following this Jesus who was despised and rejected of all men.
आज लोग कहते हैं हम उस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जिसको सारे मनुष्य ने धिक्कारा और उसके नाम को बदनाम किया था.
And they are got honor.
पर उन लोगों के पास इज्जत है.
They must be following another Jesus.
वो यीशु मसीह के पीछे नहीं कोई और मसीह के पीछे चलते हैं.
You read Isaiah 53, the real Jesus was despised and rejected by all men.
यदि हम यशायाह के 53वां अध्याय पढ़े तो उसमें हम पढ़ते कि सच्चे यीशु को धिक्कारा गया था.
It's very important for us to see that true Christianity has never been accepted by this world.
हमें जानना जरूर कि जो सच्ची मसीहत है जो सच्चा मसीह जीवन है उसको कभी इस दुनिया में किसी ने स्वीकारा नहीं है.
Because true Christianity says deny yourself.
क्योंकि सच्ची मसीहत ये कहती है कि तुम अपने आप को ना कहो.
Give up your right to live for yourself.
तुम्हारा खुद का अधिकार जीवन जीने का तुम छोड़ दो.
Give up the love of money.
पैसे से प्यार करना छोड़ दो.
When was the last time you heard a message which says the love of money is the root of all evil?
कब वो समय था जब आखिरी बार आपने ये संदेश सुना कि पैसे से प्यार सारी बुराई की जड़ है?
I've been a believer for 47 years.
मैं 47 वर्ष से विश्वासी हूँ.
I can't think of one time I heard a preacher get up and preach a whole message on the love of money is the root of all evil.
मुझे अब तक ऐसा एक दिन भी याद नहीं जब प्रचारक ने खड़े होकर ये प्रचार किया हो कि पैसे का जो प्यार है वो सारी बुराई की जड़ है.
That's in 1 Timothy 6:10.
पहले तिमोथियस के छठे अध्याय 10वें वचन में लिखा है.
Jesus said in Luke 16 verse 13.
यीशु मसीह ने लूका के 16वें अध्याय 13वें वचन में कहा.
If you love God, you cannot love money.
यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तुम पैसे से प्यार नहीं करोगे.
Have you ever heard anybody preach that?
क्या आपने कभी सुना है कोई प्रचारक ये प्रचार करता है?
Have you heard any of your television preachers preach that?
क्या आप जो टीवी पर प्रचार सुनते हैं आपने कभी सुना है कि वे लोग ये प्रचार करते हैं?
I preached it.
मैंने वो प्रचार
किया है. I preached it numerous times.
और मैंने उसका कई बार प्रचार किया
है. And they call me a false preacher.
और लोगों ने मुझसे कहा कि तुम झूठे भविष्यवक्ता हो, झूठे शिक्षक हो.
It doesn't bother me because the one who is going to judge me in the final day is not any of these people.
पर इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनंत जीवन में जो मेरा न्याय करेगा वो इंसान नहीं पर परमेश्वर
है. I am trying to open your eyes to see the truth.
मैं चाहता हूं कि आज आपकी आंखें खुल जाए कि आप इस सच्चाई को देख सकें.
If you want to live a life without regret in eternity.
यदि आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसका दुख आपको अनंत जीवन में ना हो.
I'll give you a little bit of advice.
मैं आपको कुछ राय देना चाहता हूं.
Read the scriptures.
आप इस वचन को पढ़ें.
Some time ago.
कुछ समय पहले.
When I, you know, in order to understand what was being preached all over India on Christian television,
मैं समझना चाहता था कि हमारे भारत देश के हर एक जो मसीही चैनलों पर जो प्रचार किया जा रहा है वो क्या चीजें हैं?
I watched and watched and watched and watched so many programs,
मैंने
many hours.
सारे कार्यक्रम हर एक घंटे बिताए, खूब घंटे बिताकर हर एक कार्यक्रम को देखा.
And you know what I discovered?
आपको पता है मैंने क्या पाया?
Even I was getting brainwashed.
मैंने पाया कि चैनलों को देखकर मेरा भी मन बदलता जा रहा था.
I said, Lord, please help me.
मैंने कहा प्रभु मेरी सहायता कर.
I said, I've got to read the scriptures.
मैंने कहा मैं वो सब नहीं देखूंगा, मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ.
Okay, I have absorbed what all these preachers have told me now.
ये सारे जो प्रचारकों ने प्रचार किया है वो मैंने मन में लिया है.
I've understood I'm supposed to have faith to become prosperous and rich and healthy and strong and all this.
इनकी बातों से मुझे एक बात पता चली कि मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए ताकि मैं उन्नति पाऊं, मैं परमेश्वर से चीजों की मांग करूं और उसे पालूं.
I'm supposed to have a better car than the one I have now.
और जो कुछ बुलाहट मेरे पास है उससे अच्छा बुलाहट
I'm supposed
मुझे
to have
चाहिए.
Faith to have a better house.
मेरे पास और बड़ा विश्वास होना चाहिए ताकि परमेश्वर मुझे खुद का घर दे.
Okay, Lord, let me come now to you. What you said.
प्रभु अब मैं देखना चाहता हूं आप क्या कहते हो.
And I put all this out of my mind.
तो ये सारी बातें जो मैंने सुनी थी अपने दिमाग से बाहर निकाल
दी. And I went to Matthew chapter 5.
और मैं मत्ती के पांचवें अध्याय पर गया.
And I began to read and meditate on what my Savior said in Matthew 5, 6 and 7.
और मैं पढ़ने लगा और मनन करने लगा कि मेरे उद्धारकर्ता ने मेरे लिए इस अध्याय में क्या कहा है.
And you know what I did?
और आपको पता है मैंने क्या किया?
I took a notebook.
मैंने एक किताब ली.
I wanted to be delivered from this brainwashing.
मैं चाहता हूं कि वो जो बातें सारी मेरे जो मन में बैठ चुकी थी वो मैं निकाल दूं.
I took a notebook.
मैंने एक पुस्तक ली.
And I started and I studied just four gospels.
मैंने सिर्फ ये चार जो सुसमाचार
की किताबें, Luke and John.
मैंने चार सुसमाचार की जो किताबें मत्ती,
लूक, I wrote down every subject that Jesus spoke about.
और मैंने हर एक उस विषय को, मुद्दों को लिख कर ले लिया जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इन चार सुसमाचारों में बात की थी.
He spoke about it a second time. I put that reference. He spoke on that a second time.
अगर यीशु मसीह ने कोई चीजों के बारे में दो बार बातें की थी तो मैंने वहां पे लिख दिया कि प्रभु ने दो बार बातें की.
The Bible study, the subjects that Jesus spoke on.
ये बाइबल का अध्ययन मैं कर रहा था कि वो विषय जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने बातें की.
I didn't get it from any book. I just read it here and wrote it and made my own notes.
मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी पर मैंने बाइबल पढ़ी और उसके बाद से मैंने अपने खुद के मुद्दे निकाल लिए.
I discovered.
और मुझे ये पता चला.
The first thing that Jesus preached.
पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रचार की.
Matthew 4:17, repent.
मत्ती का चौथा अध्याय 17वां वचन, पश्चाताप करो.
That is the word you hardly ever hear today.
और ये वो शब्द है जो हमें आजकल सुनाई नहीं देता है.
Repent.
पश्चाताप करो.
Turn from your sin.
अपने पाप से मुंह फेरो.
Turn from your lusting with your eyes.
अपने आंखों की अभिलाषाओं से मुंह फेरो.
Turn from your internet pornography.
अपने इंटरनेट पर देखने वाले नंगी चित्रों से मुंह फेरो.
Give up your jealousy.
अपनी जलन जो अपने मन में छुपा
से मुंह फेरो. Give up your love of money.
अपने मन में जो प्यार है पैसे के लिए उससे मुंह फेरो.
Give up your anger.
अपने गुस्से से मुंह फेरो.
Give up your unforgiving attitude to that other person.
क्षमा करने वाले स्वभाव को निकाल कर बाहर करो.
Give up your pride.
अपने घमंड को निकाल दो.
Give up your selfish way of living.
अपने लालच के जीवन को बाहर निकाल दो.
Repent, repent, repent.
पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो.
I said, Lord, make me a preacher of repentance.
मैंने कहा प्रभु मुझे पश्चाताप करने का संदेश सुनाने वाला प्रचारक बना.
That's what John the Baptist preached.
यूहन्ना बपतिस्मा जाने वाले ने
यही
कहा. यीशु मसीह ने यही प्रचार किया.
That's what Peter preached on the day of Pentecost.
यही पत्रस ने पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार किया.
Acts 20, Paul said, wherever I go, I preach repentance.
प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय में पौलुस कहता है जहां कहीं मैं जाता हूं मैं प्रचार करता हूं कि लोग पश्चाताप करें.
We are being fooled by another gospel today.
हम मूर्ख बनाए गए हैं अलग सुसमाचार के द्वारा आज के दिनों में.
And then Jesus said,
तब यीशु मसीह ने कहा,
Follow me, Matthew 4:19. That's the other thing he said.
दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के चौथे अध्याय 19वें वचन में कही,
Follow me, follow me.
यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ.
That's what we got to preach. Follow Jesus' example.
और आज हमें यह प्रचार करना कि तुम यीशु मसीह के उदाहरण का अनुकरण करो.
Live like he lived.
तुम उसके जैसा जियो जैसे वो जिया.
He did not live in a grand style. He didn't have a place to even lay his head.
यीशु मसीह के पास जगह नहीं थी कि वे अपने सर को रख सके, ना ही वो राजमहलों में रहा करता था.
Follow him.
तुम उसके जैसे.
And then I went through the Sermon on the Mount.
उसके बाद मैं पांचवें अध्याय को पढ़ते गया.
Oh, what a different message it was from what I was hearing from today's preacher.
और जो मैं टीवी पर सुन रहा था उससे बहुत बड़ा फर्क था उस संदेश और इस संदेश के बीच में.
Here it spoke about purity.
यीशु मसीह यहाँ बात कर रहा था शुद्धता के
बारे
में. Here
it spoke about humility.
यीशु मसीह बात कर रहा था नम्रता के बारे में.
He was not speaking about better houses and better land.
वो अच्छे जमीन पाने के बारे में या अच्छे मकान पाने के बारे में नहीं कह रहा था.
He was talking about riches in heaven.
वो बात कर रहा था कि तुम्हारा धन स्वर्ग में हो.
He was talking about serving others, blessing them.
वो बात कर रहा था कि किस तरह से तुम दूसरों की सेवा करो और दूसरों को आशीष करो.
He was talking about being persecuted for his name's sake.
वो बात कर रहा था कि किस प्रकार तुम उसके नाम के लिए सताए जाओ.
He was talking about overcoming anger to such an extent that you never get angry.
वो बात कर रहा था कि अपने गुस्से पर इस रीति से जय पाओ कि फिर से तुम्हें कभी गुस्सा ना आए.
Never lusting once with your eyes.
तुम कभी अपने आंखों से अभिलाषा ना करो.
Of a woman.
किसी स्त्री के विरोध में.
Never telling lies. Our yes is always yes.
कभी तुम झूठ ना बोलो, तुम्हारी हाँ हाँ हो और तुम्हारी ना ना हो.
I said, Lord, this is so different from what I'm hearing.
मैंने कहा प्रभु जो मैं सुन रहा हूँ इससे बहुत अलग है.
And I made a study of all the gospels to see all that Jesus said.
और मैंने सारा सुसमाचार पढ़ लिया और मैंने उस सारी चीजों की एक सूची बनाई जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था.
And it protected me from the false gospel I was listening.
और इन चीजों ने मेरी सुरक्षा की झूठे सुसमाचारों से जो मैं सुन रहा था.
He who has ears to hear, let him hear.
जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले.
If you want to know the truth, do what I did.
अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं जो मैंने किया वो आप भी करें.
Take your Bible and study what Jesus preached.
अपनी बाइबल उठा ले और जो यीशु मसीह ने प्रचार किया
उसे पढ़ें. And you'll find it is a completely different gospel from what you're hearing nowadays.
और आप जानोगे कि जो आजकल आप सुन रहे हैं वो सुसमाचार से ये सुसमाचार बिल्कुल अलग है.
You go into the epistles, you'll find that's what the apostles preached.
और उसके बाद जब आप पत्रों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रेरितों ने क्या प्रचार किया.
Because they wanted to prepare people for eternity.
क्योंकि प्रेरित चाहते थे कि लोगों का जीवन अनंत काल के लिए तैयार करें.
The Bible says in Ephesians in chapter 2.
बाइबल कहती है इफिसियों की किताब के दूसरे अध्याय में.
Ephesians chapter 2 we read these words.
इफिसियों के दूसरे अध्याय में हम इस वचन को पढ़ते हैं.
It talks about first of all we are saved by grace through faith not of works in verse 8.
आठवें वचन में इस बात को कहा गया है कि हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं बल्कि अनुग्रह से हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है.
There is no place for works in our being forgiven and justified.
हमारे पाप की क्षमा होने में और हमारा धर्मी गिने जाने में हमारे काम का कोई मोल नहीं है.
All your works are like filthy rags, no matter how much you do.
आपके सारे काम जो आप सोचते मैंने पुण्य किया मैंने अच्छे काम किए हैं वो कचरे के समान है.
Forgiveness of sins and being justified by God is a free gift.
पाप की क्षमा पाना और परमेश्वर के द्वारा धर्मी व्यक्ति गिना जाना परमेश्वर की ओर से मुफ्त में है.
That's the foundation of the Christian life.
मसीह जीवन का ये नींव या आधार है.
Zero works.
शून्य काम.
Simply receiving by faith.
केवल विश्वास से स्वीकार करना.
That all that Jesus did for me on the cross.
जो भी मसीह यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर किया है.
That he died for me.
कि वो मेरे लिए मरा है.
A wretch like me.
एक पापी के सलिए जो मैं हूँ.
That he shed his blood, and I come to him and say, Lord, with empty hands, I receive your forgiveness.
कि उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया और मैं उसके पास आके कहता हूँ प्रभु मुझे धो दे.
And I become a child of God.
और मैं ऐसा करके परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ.
That is the foundation.
ये हमारे जीवन का नींव या उसके आधार है.
But how many people are there in the world who just lay a foundation? And don't build anything more.
पर इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन की नींव बनाई है और छोड़ दिया और उसके ऊपर कुछ इमारत खड़ा नहीं किया है.
Would you ever lay a foundation and not build a house on it?
क्या आपने कभी नींव बनाया है और उसके ऊपर कोई घर को खड़ा नहीं किया है?
But many of you, that's exactly what you've done in your Christian life.
पर आप में से बहुत हैं जिन्होंने अपने मसीह जीवन में सिर्फ यही किया है.
You've laid the foundation, you've accepted Christ, you've been baptized in water, you're baptized in the Holy Spirit. That's the foundation.
आपने मसीह को स्वीकार लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, अपने पाप को कबूल कर लिया है, आपके पाप क्षमा चुके हैं, ये आपकी नींव है, बस आपने इतना ही किया है.
What about the superstructure?
पर उसके ऊपर खड़े होने वाली बड़ी इमारत के बारे में
क्या? In the foundation there are no works.
उस नींव को डालने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ा.
It says, by grace are you saved through faith, not of works.
क्योंकि बाइबल कहती है अनुग्रह से तुम बचे हो तुम्हारे खुद के काम से नहीं.
But in the superstructure there are to be plenty of works.
पर उस नींव के ऊपर जो इमारत खड़ी की जाने वाली है उसमें हमें काम करना है.
That's in verse 10.
और ये 10वें वचन में है.
In the foundation it says not as a result of works, verse 9.
नौवां वचन कहता है और ना कर्मों के कारण.
No works.
ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे.
No works in the foundation.
हमारे नींव में, हमारे जीवन की नींव में हमारा कोई काम नहीं था.
In the superstructure.
पर उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत में 10वां वचन कहता है
We have been created in Christ Jesus for millions of good works that God planned that we should do.
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है.
Many people have confused the superstructure with the foundation.
बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि मेरे जीवन के नींव क्या है और उसके ऊपर होने वाली इमारत कौन बनाएगा.
And their Christian life is no works in the foundation and no works in the superstructure also.
और उनका जीवन ऐसा है मेरा मसीह जीवन यह है ना मैंने नींव में कुछ काम किया ना मैं इमारत बनाने में कुछ काम करूंगा.
It doesn't matter what we do or what we don't do.
हम जो काम करते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है.
There's a lot of difference.
ये बहुत बड़ा फर्क है.
Between foundation and superstructure.
एक बड़ा फर्क है जीवन की नींव डालने में और उसके ऊपर एक इमारत खड़ी करने में.
In a foundation, you don't put doors and windows and all that.
नींव डालते समय आप कभी खिड़की दरवाजे नहीं लगाते हैं.
Nobody is so crazy to put a door in a foundation.
और कोई भी इतना जोशीला नहीं होता है नींव बनाने के लिए कि मैं उसके दरवाजा लगाऊं.
No work.
वहां पे कोई काम नहीं करना पड़ता है.
Solid granite stones and concrete, that's the foundation.
बड़े पत्थर डाल दिए जाते हैं उसके ऊपर कॉन्क्रीट सीमेंट डाल दिया जाता है.
When it comes to the superstructure,
पर उसके बाद जब इमारत बनाने का समय आता है,
doors, windows, so many things.
आप सोचने लगते हैं मुझे एक दरवाजा लगाना है मुझे एक खिड़की लगाना है मुझे ये सारी चीजें करनी
है. We know that even in a building there's a difference between foundation and superstructure.
हम खुद जानते हैं कि एक बिल्डिंग इमारत बनाने में भी नींव और उसके ऊपर खड़ी हुई इमारत में कितना फर्क है.
Jesus spoke about a foolish man who laid a foundation and never completed the building.
यीशु मसीह ने एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात की जिसने अपने घर की नींव तो डाली पर उसके ऊपर इमारत नहीं बनाई.
Here is the superstructure.
यहां पर वो बड़ी इमारत के बारे में है.
प्लान दैट गॉड मेड लॉन्ग अगो फॉर यू टू फुलफिल एंड वॉक इन इट.
इफिसियों का दूसरा अध्याय 10वें वचन में कहता है परमेश्वर ने ये योजना कि हम उसमें भले काम करें तुम्हारे लिए पहले से तैयार करके रखी है.
डू यू नो दैट लॉन्ग बिफोर यू वर बॉर्न गॉड मेड अ प्लान फॉर योर लाइफ.
आप जानते हैं इससे पहले कि इस धरती पर आप जन्म लेते परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है.
एंड गॉड वांट्स यू टू फुलफिल दैट बिफोर यू लीव दिस अर्थ.
और परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि इस दुनिया से उठाए जाने से पहले आप उस योजना को पूरा करें.
एट द एंड ऑफ जीसस लाइफ ही कुड से फादर जॉन 17:4 I have finished the work you gave me to do.
योहन्ना के 17वें अध्याय 14वें वचन में यीशु के उठाए जाने से पहले यीशु ने कहा हे पिता तूने जो मुझे काम दिया था मैंने पूरा किया है.
The apostle Paul said in 2 Timothy 4.
दूसरे तीमोथियस के 4वें अध्याय में संत पौलुस ने कहा
I have finished my course.
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली.
I know I got saved very late in life when I was 30 years old.
मुझे पता है जब मैं 30 वर्ष का था मेरी उम्र हो चुकी थी तब मेरा उद्धार हुआ.
Paul says I am 67 now I am about to die.
अभी मैं 67 इयर्स ओल्ड का हूं और मुझे अब मौत होने वाली
But
है।
I have finished my course.
पर वो कहता मैंने दौड़ पूरी कर ली है.
Plan God had for me to fulfill, I finished it.
वो योजना जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई थी मैंने वो पूरी कर दी
है। I know it meant suffering, being beaten, shipwrecked and all, but I finished my course.
मुझे मारा गया मुझे नाव टूट गए मैं बहुत दिन भूखा लगा प्यासा लगा पर मैंने योजना पूरी की है.
What about you, my brother?
पर आपके और मेरे बारे में क्या?
If you keep listening to all this trash, this false gospel, You will never finish your course. I'll tell you that.
मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इसी सुसमाचार को जो आज प्रचार किया जा रहा है टीवी पर और दूसरी जगह पे सुनते रहे तो आप कभी अपनी दौड़ को पूरी ना करोगे.
But if you listen to the gospel written in the scriptures,
पर यदि आप उस सुसमाचार को सुनते हैं जो वचन में लिखा हुआ है
taking up the cross,
आप अपने क्रूस को उठाते हैं
denying yourself,
अपने आप को ना कहते हैं
hating this world,
और इस वचन को ले लेते हैं
hating this world,
इस वचन को लेते हैं
इस दुनिया को
लेते हैं
and hating money.
और पैसों से नफरत करते हैं
And earthly glory,
और इस दुनिया की महिमा से नफरत करते हैं
then you will complete your course.
तो आप अपनी दौड़ पूरी करोगे.
God has got a plan for your life.
परमेश्वर के पास एक योजना है आपके जीवन के लिए.
When I was a young 21 year old Christian,
जब मैं खुद एक जवान मसीह था और मेरी उम्र 21 वर्ष की थी,
I had just taken baptism.
मैंने बपतिस्मा लिया है.
God, I was a naval officer here in Bombay.
मैं बंबई में एक नेवल अफसर था.
God gripped me with one truth.
परमेश्वर ने मेरे हृदय को एक सच्चाई से धर लिया था.
I have got a plan for your life.
मेरे पास तेरे जीवन के लिए एक योजना है.
I said, Lord, please help me to fulfill it.
मैंने कहा प्रभु मैं विनती करता हूं कि इस योजना को पूरी करने के लिए मेरी मदद कर.
That was 46 years ago.
ये बात 46 वर्ष पहले की है.
And I said, Lord, there's only one thing I want to do on this earth. I want to fulfill that plan.
और मैंने कहा, प्रभु, इस दुनिया में मैं सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ. वो योजना जो तूने मेरे लिए बनाई है, उसको पूरी करना चाहता
हूँ. I don't care what it costs me. I don't care what people say about me.
प्रभु, मैं ये चिंता नहीं करता हूँ कि उसके लिए मुझे क्या दोम चुकाना पड़े या वो पूरी करते समय लोग मेरे बारे में क्या कहे.
Today, I can look back with great satisfaction.
आज मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे बड़ा संतुष्ट होता है.
That I have not wasted my life.
कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं बिताया है.
Dear brothers, sister,
मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
What about you?
आपके बारे में क्या?
Time is going on.
समय बीता जा रहा है.
One of these days Christ will come.
और अचानक एक दिन मसीह आ जाएगा.
I hope you would have finished the course God appointed for you before you leave this earth.
मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले कि आप उठाए जाएं, आप अपनी दौड़ को पूरे कर लें.
How much you have in your bank account won't matter that day.
आपके बैंक के खातों में कितना पैसा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
How big a house you lived in won't count for anything.
आज आप कितने बड़े घर में रहते हो, इसकी कोई गिनती करने वाला नहीं है.
Whether you drove a scooter or a car won't make any difference in that day.
आज आप स्कूटर चलाते हैं या कार में सफर करते हैं, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
What honors you got in the world fit for the trash can.
आज कौन से पुरस्कार आपको दुनिया ने दिए हैं, आप कचरे में डाल सकते हैं.
The only thing that will matter in that day is did you fulfill the plan God made for you before you were born.
उस दिन सिर्फ एक चीज गिनी जाएगी कि क्या आपने वो सुयोजना को पूरा किया है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई थी.
If you have wasted many years of your past life, you can't do anything about it now.
अगर आपने अपने जीवन के बहुत सारे सालों को व्यर्थ कर दिया है और आज से आप मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ.
You can do something from today onward.
पर फिर भी आज से आप कुछ कर सकते हैं.
Say, Lord, the rest of my life I give to you.
आप कह सकते हैं, प्रभु, मेरा बचा हुआ जीवन मैं आपके हाथ में देता हूँ.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.
Our heads before God.
आइए अपने सिरों को प्रभु के सामने झुकाएं.
Dear brother, sister.
मेरे प्रिय भाई और बहनों.
Do you want to live a life where you have no regrets in eternity?
यदि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसका दुख आपको ना हो जब अनंत जीवन जी रहे
हो. Take your life seriously from today.
तो आज से आप अपने जीवन के बारे में गंभीर हो जाएं.
You don't have to listen to my words.
आपको मेरी वचन की सुनने की जरूरत नहीं.
Please listen to the New Testament.
पर कृपया नए करार को सुने.
Read that and follow it.
उसे पढ़े और उसका अनुसरण करें.
That is the light and you will not be deceived.
और ये वो प्रकाश है जिसमें आप कभी फंसोगे नहीं.
Heavenly Father.
स्वर्गीय पिता.
In the midst of deception, help us to see your light.
प्रभु, इस फसाव के बीच में हमें तेरा प्रकाश देखने के लिए मदद कर.
To walk in Jesus' footsteps.
यीशु के पदचिन्हों पर चलने के लिए मदद कर.
We pray in Jesus' name.
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से.
Amen.
Amen.